यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 13 नवंबर 2020 के बुलेटिन की सुर्खियां। विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 73वें सत्र में 20 बीमारियों का मुकाबला करने के लिए एक नई रणनीति पर सहमति। कोविड-19 से पैदा हुए व्यवधान के कारण खसरा और न्यूमोनिया से मौतों के मामलों में बढ़ोतरी। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यमों के जरिए तस्करी के मामले बढ़े, बड़ी कंपनियों से सहयोग की पुकार। यमन और लीबिया में शांति स्थापना के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की जरूरत पर जोर, और इनके अलावा कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य असेंबली के 73वें सत्र के दौरान एक ऐसे महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट पर सहमति बनी है, जिसके माध्यम से उपेक्षा का शिकार 20 बीमारियों से निपटने के लिए रणनीति में व्यापक बदलाव सुनिश्चित किए जाएंगे। ये रोडमैप वर्ष 2020 में प्रकाशित किए गए उस ब्लूप्रिंट का स्थान लेगा, जिसके तहत तय लक्ष्य ठोस प्रगति होने के बावजूद अभी हासिल नहीं किए जा सके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसस ने विश्व स्वास्थ्य असेंबली को संबोधित करते हुए ध्यान दिलाया कि पेरिस समझौते, टिकाऊ विकास एजेंडा सहित अन्य वैश्विक समझौतों पर प्रगति दरअसल पथ भ्रष्ट राष्ट्रवाद और पारस्परिक सहयोग में कमी से प्रभावित हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य असेंबली के सत्र में जिस नए रोडमैप पर सहमति बनी है, उसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली ऐसी 20 बीमारियां हैं जो उपेक्षा का शिकार हैं और अक्सर निर्धन समुदायों को अपना निशाना बनाती हैं। इनमें नेत्र विकार ट्रैकोमा, याज, ड्रैकोनिकोलाइसिस, डेंगी, कुष्ठ रोग, रेबीज सहित अन्य बीमारियां हैं। ऐसी 20 बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए वैश्विक लक्ष्यों और पड़ावों को इसमें पेश किया गया है। रोडमैप में कहा गया है कि अगले एक दशक के भीतर सभी देशों में स्वास्थ्य साझेदारों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना होगा और सरकारों व समुदायों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। वर्ष 2030 के लिए तय लक्ष्यों में इस बात पर जोर दिया गया है कि उपेक्षित बीमारियों का उपचार तलाश करने वाले मरीजों की संख्या में 90% तक की कटौती लाई जाए। इसके अलावा ड्रैकोनिकोलाइसिस और त्वचा की बीमारी याज के उन्मूलन की पुकार लगाई गई है। असेंबली के सत्र के दौरान सदस्य देशों ने मस्तिष्क ज्वर और मिर्गी पर दो प्रस्तावों को पारित करने की भी सिफारिशें पेश की हैं। कोविड-19 महामारी के कारण मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य असेंबली के वार्षिक सत्र को सीमित कर दिया गया था, जिसके बाद सोमवार को 73वें सत्र के शेष भाग की फिर शुरुआत हुई है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने असेंबली की बैठक को संबोधित करते हुए कहा,
It's time for the world to heal from the ravages of this pandemic and the
यह समय दुनिया के लिए अपने घाव भरने का है महामारी के विध्वंस से और उन भू राजनीतिक विभाजनों से जो हमें अस्वस्थ, असुरक्षित और अन्यायपूर्ण विश्व के भविष्य के गर्त में आगे धकेल रहे हैं। महानिदेशक गेब्रियसिस के शब्द। वर्ष 2015 में टिकाऊ विकास लक्ष्यों पर 2030 एजेंडा, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता और विकास के लिए वित्तीय संसाधनों पर अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा पर देशों की सरकारों में सहमति कायम हुई थी। इसे UN एजेंसी के प्रमुख ने एक बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद से पथ भ्रष्ट राष्ट्रवाद और अलग थलग रहने की भावनाओं का उफान बढ़ा है, जिससे साझा उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते को कमजोर किया गया है और टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के बावजूद प्रयास खंडित हैं और आपसी समन्वय के बगैर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण टिकाऊ विकास लक्ष्यों के मार्ग पर आई रुकावट 2030 एजेंडा को हासिल करने की अहमियत और उसके रास्ते में आने वाली चुनौतियों को भी दर्शाती है। कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 5,21,00,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 12,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
खसरा बीमारी के कारण वर्ष 2019 में 2,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और पिछले 23 वर्षों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और बीमारियों पर नियंत्रण के लिए अमेरिकी विभाग CDC की एक साझा रिपोर्ट दर्शाती है कि एक दशक में वैक्सीन की पर्याप्त कवरेज में नाकामी की वजह से खसरा के मामलों में तेजी देखी गई है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत आने वाले देशों में मामलों में बढ़ोतरी हुई है और विश्व में 8.5 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष कम मामले देखने को मिले हैं, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण टीकाकरण प्रयासों को झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस संकट से पहले दुनिया खसरे के संकट से जूझ रही थी और ये खतरा अभी टला नहीं है। COVID-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ पड़ा है, लेकिन एक घातक बीमारी के खिलाफ हमारी लड़ाई को दूसरी बीमारी की भेंट नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इस बीच 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने आगाह किया है कि न्यूमोनिया संक्रमण के गंभीर मामलों में हर साल 42 लाख से ज़्यादा बच्चों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसे पूरा किया जाना होगा। न्यूमोनिया एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है, जिससे हर साल 5 साल से कम उम्र के लगभग 8 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन वर्ष 2020 में COVID-19 महामारी ने इस घातक संक्रमण से निपटने के प्रयासों को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इस दिवस पर यूनिसेफ ने कहा कि कोरोना वायरस संकट पर जवाबी कार्रवाई और निर्बलों पर उसके असर से निपटने के प्रयासों के दौरान ये तथ्य नहीं भुलाया जा सकता कि न्यूमोनिया हर दिन 2000 से अधिक नन्ही जिंदगियों की मौत के लिए जिम्मेदार है। यूनिसेफ के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन और एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से न्यूमोनिया के गंभीर मामलों से पीड़ित बच्चों की जान बचाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने सोशल मीडिया कंपनियों से आग्रह किया है कि महिलाओं व लड़कियों की तस्करी को रोकने के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जानी होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यमों पर पीड़ितों को तस्करी के जाल में फंसाए जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति का कहना है कि दुनिया भर में महिलाएं और लड़कियां तस्करी की समस्या से सबसे ज्यादा पीड़ितों में हैं। COVID-19 महामारी ने तस्करी में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निपटने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बावजूद तस्करी में शामिल नेटवर्क अक्सर किसी सजा के डर के बगैर इसे अंजाम देते हैं। आयोग के सदस्यों ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस संकट के दौरान पीड़ितों के लिए हालात और भी ज्यादा खराब हुए हैं। हाल के महीनों में साइबर माध्यमों पर दुनिया के अनेक देशों में तस्करी के मामलों में उछाल आया है। मांग में बढ़ोतरी को सोशल मीडिया, डार्क वेब और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा किया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यमों के जरिए संभावित पीड़ितों तक पहुंचना और अपराधियों के लिए अपनी पहचान छिपाना आसान होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है कि ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के लिए निर्बलों को शिकार बनाए जाने की आशंकाएं बढ़ी हैं। साथ ही बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री और बाल यौन तस्करी के मामलों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मामले बढ़ रहे हैं। इस संबंध में UN विशेषज्ञों ने सिफारिशों का एक मसौदा तैयार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया और मैसेजिंग कंपनियों से आग्रह किया है कि महिलाओं व लड़कियों को तस्करी और यौन शोषण के जोखिम से बचाने के लिए जरूरी उपायों को सुनिश्चित करना होगा। उनके मुताबिक बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य औजारों से ऐसे रुझानों और गतिविधियों पर नजर रखनी होगी जिनसे तस्करी का जोखिम बढ़ता हो। इसके अलावा ऑनलाइन कंपनियों को जरूरी ढांचों और प्रक्रियाओं को तैयार करना होगा और संबंधित एजेंसियों के साथ अहम जानकारी साझा करनी होगी। UN समिति ने सदस्य देशों से भी आह्वान किया है कि महिलाओं व लड़कियों को इन समस्याओं के गर्त में धकेले जाने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को दूर किया जाना होगा। बताया गया है कि सामाजिक और आर्थिक अन्यायपूर्ण हालात, हिंसक संघर्ष, मानवीय आपदाएं और भेदभाव पीड़ितों को अक्सर देश छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID-19 महामारी शुरू होने के समय ही रिकॉर्ड स्तर पर रही वैश्विक भुखमरी और आबादी के विस्थापन की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि प्रवासी जन व बाहर से भेजी जाने वाली रकम पर निर्भर लोगों को अपने परिवारों की गुजर बसर चलाने की खातिर कामकाज पाने के लिए हताश और मजबूर होना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन IOM द्वारा जारी इस रिपोर्ट में वैश्विक समुदाय से तात्कालिक व बढ़ती मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मानवीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया गया है। साथ ही विशेष रूप से बहुत नाजुक हालात में रहने वाले लोगों पर COVID-19 महामारी के गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए ठोस उपाय करने का भी आग्रह किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बीजली ने कहा है कि खुद महामारी से कहीं ज्यादा उसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव लोगों के लिए विनाशकारी है। उन्होंने कहा कि निम्न व मध्यम आय वाले अनेक देशों में बहुत से लोग कुछ महीनों पहले तो गरीब थे, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि उनकी आजीविकाएं ही तबाह हो चुकी हैं। विदेशों में रहने वाले परिजनों से जो रकम मूल देशों में रहने वाले परिवारों को भेजी जाती थी, उसमें बहुत कमी हुई है, जिससे वित्तीय कठिनाइयां बहुत बढ़ गई हैं। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में अनेक स्थानों पर भुखमरी की दर बहुत तेजी से बढ़ी है। इस मुद्दे पर अपनी तरह की ये पहली रिपोर्ट है जिसमें दुनिया भर में भुखमरी व प्रवासियों के प्रमुख स्थानों पर रहने वाले लोगों की खाद्य सुरक्षा पर COVID-19 महामारी के विनाशकारी प्रभावों का आकलन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के महानिदेशक एंटोनियो वितोरिनो ने COVID-19 के प्रभावों की तरफ ध्यान दिलाते हुए आगाह किया कि इससे न केवल वैश्विक संकल्प जोखिम में पड़ गए हैं, बल्कि मौजूदा सहायता कार्यक्रमों पर भी खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने कहा कि COVID-19 के लोगों के स्वास्थ्य व उनके आवागमन पर प्रभावों के कारण वैश्विक जिम्मेदारियों को समेटने का जोखिम पैदा हो गया है। इनमें प्रवासन पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट भी शामिल है। साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने के मौजूदा प्रयासों में भी बाधाएं आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने विश्व नेताओं से वर्ष 2024 तक राष्ट्रविहीनता के उन्मूलन के लिए निडर और तत्पर प्रयास करने की पुकार लगाई है। हाल के वर्षों में राष्ट्रविहीन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए खास प्रयास किए गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस संकट काल में उनके लिए चुनौतियां और भी गहरी हुई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
वर्ष 2024 तक राष्ट्रविहीनता के अंत के लिए शुरू की गई #iBelong मुहिम की छठी वर्षगांठ पर उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने ध्यान दिलाया कि मानवता का तिरस्कार करने वाली इस चुनौती से निपटने के प्रयासों को दुगना करना होगा। उन्होंने सचेत किया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस आवश्यकता को पूरा किया जाना और भी ज्यादा अहम है। COVID-19 महामारी से दुनिया भर में लाखों राष्ट्रविहीनों के लिए हालात बदतर हुए हैं। फिलिपो ग्रैंडी ने कहा, एक महामारी नागरिकों और गैर नागरिकों में भेद नहीं करती है। राष्ट्रविहीन जनसमूहों की संख्या के संबंध में वैश्विक आंकड़ों को जुटा पाना मुश्किल है। आमतौर पर राष्ट्रीय जनगणना में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुमान दर्शाते हैं कि 76 देशों में लगभग 42 लाख लोग राष्ट्रविहीन के तौर पर रह रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। UN शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रविहीनता के मुद्दे को आसानी से सुलझाया जा सकता है और इसकी रोकथाम भी संभव है। एक व्यक्ति के दर्जे और जीवन को बदलने के लिए यह राजनीतिक इच्छा शक्ति से जुड़ा मामला है। वर्ष 2014 में शुरू हुई #iBelong मुहिम का लक्ष्य 10 सालों में राष्ट्रविहीनता का अंत करना है। इसके तहत राष्ट्रविहीनों की शिनाख्त और उनकी रक्षा, राष्ट्रविहीनता के मौजूदा मामलों का निपटारा और नए मामलों की रोकथाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रविहीनता से निपटने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन COVID-19 महामारी ने उनकी दिक्कतों और राष्ट्रविहीनों द्वारा झेली जाने वाली अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को और विकट बना दिया है। राष्ट्रविहीन होने की वजह से उनके पास कानूनी अधिकारों का अभाव है और अक्सर बुनियादी सेवाओं तक पहुंचना चुनौतियां भरा है। इस वजह से वे राजनीतिक और आर्थिक रूप से वंचित रहने के लिए मजबूर होते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है और उन्हें शोषण व उत्पीड़न का भी जोखिम झेलना पड़ता है।
यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने स्थानीय लोगों की व्यथा पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए शांति प्रयासों में पूरी ऊर्जा झोंके जाने की जरूरत है। यू एन दूत ने बुधवार को वीडियो लिंक के जरिए सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए हिंसा रोकने, देश को खोलने और समावेशी राजनीतिक समाधान की तलाश तेज करने की पुकार लगाई। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि पहले की अपेक्षा अब शांति है, लेकिन अफवाहें फैल रही हैं कि लड़ाई जल्द ही फिर भड़क सकती है और फिर से देश भर में व्यापक पैमाने पर हिंसा का कारण बन सकती है। विशेष दूत ने सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को बताया कि कई महीनों से वो वर्चुअल रूप से साझा घोषणा पत्र के मसौदे को तैयार करने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार विभिन्न पक्षों से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों को अब समझौते पर पहुंचना होगा और उनके नेतृत्व द्वारा गंभीर और सोच समझकर लिए गए संकल्पों के जरिए ही इस संघर्ष का अंत किया जा सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की मुख्य अभियोजक फतू बेंसूडा ने लीबिया में युद्धरत पक्षों से उस ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौते को लागू करने का आग्रह किया है जिस पर हाल ही में सहमति बनी है। ICC अभियोजक ने कहा कि शांति की प्रतीक्षा कर रही लीबियाई जनता के लिए यह समझौता एक ठोस प्रगति को दर्शाता है और स्वागत योग्य है। फतू बेंसूडा ने अपनी ये अपील मंगलवार को सुरक्षा परिषद को मौजूदा हालात से अवगत कराते हुए जारी की। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के फलस्वरूप लीबिया में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार और लीबियाई नेशनल आर्मी के बीच कुछ ही सप्ताह पहले जिनीवा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ICC अभियोजक ने कहा कि लीबिया में अत्याचार के पीड़ितों को यह भरोसा दिलाया जाना होगा कि युद्ध विराम या किसी भावी समझौते के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हुए अपराधों के गंभीर मामलों के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और आरोपों का सामना करने के लिए उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी।